ओम शांति। आज के शाम के क्लास में आदरणीय शीलू बहन का हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। विशेष रूप से आप हम सबको क्लास कराने के लिए पांडा भवन से हम सबके बीच में अभी पहुंचे हैं। 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने आप बाबा के इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। 1969 में साइंस में स्नातक होने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में ही आपने मानवता की सेवा अर्थ अपना सारा जीवन इस ईश्वर विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। आपने पांचों महाद्वीपों में 70 से भी अधिक देशों में यात्राएं की हैं, जहां प्रवचनों के माध्यम से सकारात्मक सोचने की कला, तनावमुक्त जीवन, राजयोग द्वारा जीवन मूल्यों का विकास आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। आपकी स्पष्ट तार्किक आत्मिक स्नेह आध्यात्म रस पूर्ण वाणी की बढ़ती हुई चाहना को लेकर कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचनों की ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी आदि भी उपलब्ध हैं। आपके प्रवचन जी टीवी, आस्था चैनल, सोनी टीवी आदि में प्रसारित होते रहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी तथा सिंधी भाषा में आप धारा प्रवाह बोलती हैं तथा इन भाषाओं में कुशल वक्ता के साथ आप सफल अनुवादक भी हैं। किसी भी आध्यात्मिक विषय पर अनुभव के रस में आप अधिकार व प्रभावी रूप से बोल सकते हैं। आपकी मीठी वाणी से अनेक आत्माओं का संबंध सहज ही बाबा से जुड़ जाता है। अव्यक्त बाप दादा ने आपकी वाणी में सरस्वती का वास ऐसा आपको बहुत अच्छा वरदान दिया हुआ है और आपको बाबा ने हर की पौड़ी भी कहा है। इसलिए आपके लिए मैं दो शब्द कहूंगी। आप तो जन्म से ही प्रभु की स्नेही हो, आप तो जन्म से ही प्रभु की स्नेही हो, माता पिता की गोद में पली हो। अनुभव के शब्दों से आत्माओं की डोर परमात्मा संग जुड़ाती चली हो, परमात्मा संग जुड़ाती चली हो। पावन बनते बनाते सबको आप हर की पौड़ी बन गई हो, आप हर की पौड़ी बन गई हो। शीलू बहन जी से हम क्लास करेंगे। साक्षी, दृष्टा, स्थिति व अवस्था।
ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने बहुत प्यारा गीत सुना, जीवन की नैया कर ले प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे इसे वो संभाले। तो हम सब ने अपने जीवन की नैया प्रभु के हवाले कर दी है ना? या अभी समझते हैं कि करनी है? जो समझते हैं कि जीवन की नैया प्रभु के हवाले कर दी है वो हाथ उठाएं। अच्छा, और जो समझते हैं कि नहीं अभी तक तो पूरी नहीं हुई, अभी करना है, जो समझते अभी करना है वे हाथ उठाएं। कोई नहीं? अच्छा, तो सब ने अपने जीवन की नैया प्रभु के हवाले कर दी है और इसी संकल्प से चल रहे हैं कि जैसे भी वो चलाए, जैसे संभाले, हम उसमें खुश हैं। अब इसके बाद का आगे का कदम क्या है? जीवन की नैया तो उन्हें सौंप दी, वो खिवैया बन करके इस नैया को चला रहा है। लेकिन इसके आगे का कदम क्या है? बाबा के हम बन गए उसकी हमें बहुत खुशी है। इस पर भी एक गीत है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। तो बाबा के बन गए, जीवन की नैया उन्हें सौंप दी, तो खुश हम रहते हैं, खुशी हमें इलाही मिल रही है, ये उसका अनुभव है। बोझ खत्म हो गया, हल्के हो गए, वही चला रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, हुकुम ही हुकुम चलाए रहा, सब उनके हुकुम से चल रहा है। मम्मा का ये बड़ा सुंदर स्लोगन था, हुकुम ही हुकुम चलाए रहा। वैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कि सब उसके हुकुम से चलता है, तो उसको उल्टा ले लिया है कि भगवान की हुकुम के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। हर चीज उसके हुकुम से ही चलती है, पत्ता भी हिलेगा तो भगवान हुकुम करता है तब वो हिलता है, ये हाथ भी तब उठता है जब भगवान हुकुम करता है। अब इसको उल्टा ले लिया, क्योंकि ये तो आत्मा की शक्ति है, हाथ ऊपर उठता है। आत्मा न हो तो शरीर का हाथ थोड़ी अपने आप उठेगा, और पत्ता हिलता है तो वो प्रकृति की शक्ति है, हवा का झोंका लगता है पत्ता हिलता है। लेकिन ये बहुत ऊंची भावना है कि भगवान ही हमें चला रहा है, हमने उसे अपने जीवन की नैया सौंप दी है, और उनका बनने से सुख इलाही मिल रहा है। अब इसके बाद कौन सा कदम है? भगवान का तो बन गए, जीवन की नैया उन्हें सौंप दी तो उनके बन गए, अब उनके बनने के बाद आगे का कदम क्या है? आगे का कदम है उनके समान बनना। उनका बनना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भी सब कहते हैं हमको तो भगवान चला रहा है, वही पालना कर रहा है, हम तो उनके ही हुक्म से चलते हैं, उनकी आज्ञा जो होगी वही हम करते हैं, भक्ति में भावना अनुसार कहते हैं। लेकिन भगवान का बनना यही सब कुछ नहीं है, इसके आगे का कदम है उनके समान बनना। यही बाबा हमसे चाहते हैं कि हम बच्चे उनके समान बने। इतना जो बाबा हमें प्यार देते हैं, उस प्यार का रिटर्न यही है कि हम उनके समान बने। उनके समान बनने का मतलब यही होगा कि जो भी बाबा के गुण हैं वो सब हमारे में आ जाए, जितनी उसकी महिमा है। चलो सारा सागर तो हम नहीं बन सकेंगे, लेकिन अंश में तो जरूर बनते हैं। तो जो भी उनकी महिमा है वो सब हमारी बन जाए, तब हम कहेंगे कि हम उनके समान बनते हैं। वैसे तो बाबा की महिमा तो अपरम अपार है, लेकिन एक बहुत बड़ी महिमा भगवान के लिए कहते हैं, जो आज की मुरली में था, तुम्हारी गत मत तू ही जान, तुम ही जानो और न जाने कोई, ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी है। हम आत्माओं की गति करने की जो मत वो देते हैं वो भी सबसे न्यारी है, इसीलिए वही जानता है सब कुछ। परंतु वो सब कुछ जानते हुए भी बाबा कितना साक्षी और दृष्टा है। साक्षी और दृष्टा ये भी एक बहुत बड़ा गुण है परमात्मा का, क्योंकि आत्मा ही जो कर्म करती है उसका फल पाती है। इसलिए कहेंगे कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करता है वो भरता है। तो परमात्मा तो सदा साक्षी और दृष्टा है, परंतु ये भी जरूर है कि जो हिम्मत रखता है उनको मदद जरूर देता है। पर साक्षी और दृष्टा इस हिसाब से है कि हमारे कर्म में वो इंटरफियर नहीं करता, इसलिए हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है। परंतु ये अवश्य है कि उसकी मदद भी अपार है। जो बाबा कहते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 100 कदम, 1000 कदम, 1,00,000 कदम, पदम कदम तुम्हारे आगे आऊं। पर पहला कदम हमारा हो। भक्ति मार्ग में तो इतने असहाय हो जाते हैं कई बार, जो कहते हैं कि भगवान मदद तो तुम करो ही, पर हिम्मत भी तुम दो। हिम्मत भी नहीं होती है उनको करने की, कदम एक आगे बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं होती है। इतने असहाय, इतने निर्बल बन जाते हैं। तो बाबा कहते इतने तो निर्बल मत बनो ना। आप लोग भी देखो कितने कहेंगे बहुत हिम्मत वाले थे। मालूम था कि बाबा नहीं आने वाले हैं, और मधुबन से डायरेक्शन गया कि आपका जैसे रिजर्वेशन है उसको कैंसिल न करें, जैसे आपका प्रोग्राम है उसी अनुसार ही आए, तो अवश्य बाबा बहुत मदद करेगा। तो आपने हिम्मत रखी और उस हिम्मत के आधार से आप आए, तो अवश्य आपको इसकी कितना गुना मदद मिलेगी, कितना गुना, बहुत गुना मदद मिलेगी, क्योंकि हिम्मत रखी ना। जिन्होंने हिम्मत नहीं रखी, सोचा बाबा तो नहीं आ रहे इसलिए चलो कैंसिल कर दो। आप कई ग्रुप में से कितनों ने कैंसिल भी कर दिया होगा, बाबा तो नहीं आ रहे हैं क्या, परंतु कुछ पता है आगे से क्या होना है। ये भी बाबा, आज बाबा ने कहा ना, बाबा राजू रमजबाज है, कैसे भगवान की क्या युक्तियां हैं वो तो वही जाने। तो इसीलिए क्या इसमें राज है वो तो बाबा ही जाने। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, हम अपने कदम आगे बढ़ाते तो बाबा हमको 1,00,000 पदम गुना मदद करते हैं। परंतु उतने ही बाबा साक्षी दृष्टा भी है, और हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में साक्षी और दृष्टा बनो। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि हर बात में दो चॉइस जरूर होती है, या तो हम किनारा कर देते हैं या तो हम उसमें फंस जाते हैं। दोनों ही बड़ा सहज है, किनारा करना भी सहज है और फंस जाना भी सहज है। जैसे बाबा सन्यासियों का मिसाल देते हैं, आज भी बाबा की मुरली में था कि सन्यासी तो कभी नहीं कहेंगे कि साथ में रहो और पवित्र रहो, ज्ञान की तलवार बीच में रखो, साथ में रहो लेकिन ज्ञान की तलवार बीच में रखकर पवित्र रहो, क्योंकि वो तो समझते ये तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए घर बार को छोड़ देते हैं, पत्नी को नर्क का द्वार समझ लेते हैं स्त्री को, और समझते हैं कि हम तो नहीं इसको कर सकते इसीलिए घर बार छोड़ देते हैं। पर बाबा कहते हैं तुमको तो ज्ञान की तलवार है, तुम इस ज्ञान की तलवार के आधार से साथ में रहते भी पवित्र रह सकते हो। तो कई ऐसे भाई आते हैं जो पत्नी जिनको भू 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 करती रही, वह कीड़े को भ्रमरी बना दिया और उनको बाबा के पास ले आती है, और वो बाबा वो कहता है कि बाबा मेरी पत्नी तो मेरी गुरु बन गई, जो सचमुच मेरा उद्धार कर लिया, और दोनों मिलकर एक साथ रहकर भी कैसे पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो निवृत्ति मार्ग भी बड़ा सहज है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया खत्म, परंतु फिर भी कर्मों का हिसाब किताब कई बार बहुत खींचता है, और फंसना भी बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है फंसना। अटैचमेंट तो आजकल इतनी सहज लग जाती है, दो किसी ने दो शब्द बड़े प्यार के कहे, थोड़ा फुसलाया, थोड़ा कुछ आकर्षित किया, तो सब हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते, लट्टू हो जाते। कलयुगी दुनिया में तो ये भी बड़ा सहज है, कुछ किसी ने कोई चीज हमको दी, मेरी इच्छा कोई छोटी मोटी पूरी की, तो बस हम उनको जैसे उनके लट्टू हो जाते, उनके ऊपर मुरीद हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दोनों ही गलत है, किसकी कोई विशेषता देखी तो उस पर भी लट्टू हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं माना उसी में ही बुद्धि रमण करती रहती है, जैसे लट्टू होता है ना वो गोल गोल घूमता रहता है, तो बुद्धि मन बुद्धि भी उसी को ही याद करते रहते, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, मानो उसी में फंस गए। तो दोनों ही बाबा कहते गलत है, परंतु न हम कहीं फंसे न हम कुछ छोड़े, निभाते हुए भी न आकर्षण में आए न नफरत करें, क्योंकि नफरत करना भी बहुत सहज है, किसी का अवगुण देखा तुरंत उनसे नफरत आ जाती है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरा कहना नहीं माना, कुछ गलत काम कर दिया, तो तुरंत उनसे नफरत हो जाती है कि ये तो है ही ऐसा। तो दोनों ही जो पक्ष हैं वो गलत हो जाते हैं, इसीलिए साक्षी और दृष्टा ये कैसी स्थिति है जिसमें हम न फंसते हैं न ही हम किनारा करते हैं, छोड़ते भी कुछ नहीं है पर फंसते भी कहीं नहीं है। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में ही था कि कैसे ड्रामा का कितना सुंदर ज्ञान हमें दिया है कि बच्चे इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट, ये कहने में बड़ा सहज है लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी गहराई है कि हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक का भी पार्ट नहीं मिलता दूसरे के पार्ट से, परमात्मा का भी पार्ट अपना है, ऐसे बाबा ने कहा ना आज की, ऐसे नहीं कि वो ही सब मोनो एक्टिंग कर रहा है, एकांकी जैसे मोनो एक्टिंग होती है ना, एक ही व्यक्ति कईयों का पार्ट बजाता है तो उसको नाचना पड़ता है, समझो चार जनों का पार्ट एक ही व्यक्ति बजा रहा है, तो एक जगह वो खड़ा होगा तो एक जने का पार्ट बजाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति थोड़ा दूर खड़ा है तो वहां जाकर खड़ा होगा और उसका पार्ट बजाएगा, आवाज भी बदली करेगा, एक्शन भी बदली करेगा, फिर तीसरे जने का पार्ट बजाएगा तो फिर आवाज बदली करेगा, एक्शन बदली करेगा, फिर चौथे का पार्ट बजाएगा तो नाचता रहेगा सारा वक्त स्टेज पर, क्योंकि एक ही व्यक्ति सबका पार्ट बजा रहा है। तो आज बाबा ने कहा कि ऐसे मैं थोड़ी नाचता रहता हूँ इस सृष्टि मंच पर, जो एक एक का पार्ट मैं ही बजाता रहता हूँ, नहीं, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन इस पार्ट में ये विशेषता है कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। अब इसकी गहराई के अंदर जाने से सचमुच हम साक्षी दृष्टा बहुत सुंदर रूप से बन सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब दूसरों का पार्ट देखते हैं या तो भेंट करने लगते हैं, ये मेरे से बहुत अच्छा है, मैं तो इनसे अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर तो ये विशेषताएं नहीं है, मेरे अंदर तो कोई खूबियां ही नहीं है, और इसमें देखो कितनी खूबियां हैं। अब उसके गुणगान करते करते उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, पर मुझे भी ऐसे गुण धारण करने हैं ये लक्ष्य नहीं रहता है, तो आकर्षित हो जाते हैं, परंतु कई बार अभिमान आता है और दूसरे में वो मेरे जैसे गुण नहीं है तो उनसे नफरत आती कि देखो इसको अकल भी है क्या, ये कैसा कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे देख रहा है, इसका अकल ही नहीं है, एकदम बुद्धू है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो जैसे नफरत की भावना आती है। तो बाबा कहते हैं ये दोनों ना हो, केवल व्यक्ति के प्रति भी नहीं पर साधनों के प्रति भी। आज बाबा की मुरली में वरदान भी यही था, चाहे कोई साधनों के प्रति भी आकर्षित नहीं होना, क्योंकि हमारी साधना बहुत ऊंची है। साधन तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे, या जितने भी विज्ञान के साधन हैं, इन सबको नष्ट होने में कितनी देर लगेगी। अभी भी आप लोगों को मालूम हो कि अमेरिका में जो पूर्वी तट है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये जो पूर्वी तट के शहर है, वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, इतना नुकसान अभी होने की संभावना या हो रहा आज के दिन का था। लोग इतने घबराए हुए, बिजली उड़ गई, मानो हवा इतनी तेज और सागर में तूफान, और इतना नुकसान लोगों को, लाखों लोगों को सागर के किनारे से दूर किया है, मानो अगर तूफान आया तो सब बिजली के खंभे उखड़ जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे, तो नेचुरली बिजली गई तो सब खत्म, क्योंकि विदेशों में तो बिजली के आधार पर ही सारी दुनिया है, सारा सब कुछ बिजली के आधार पर, बिजली गई तो सब खत्म। तो उससे कितना डर लोगों को लगता है, है क्या होगा, है क्या होगा। और बाबा ने हमको तो पहले से ही पाठ पक्का करा लिया है कि बच्चे, हाँ तीन पाठ पक्का कराए ना बाबा ने, बच्चे अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। जो भी होगा अचानक होगा, उसके लिए एवर रेडी रहना है, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अभ्यास कौन सा चाहिए, साक्षी दृष्टा रहने का अभ्यास, और उसके लिए ये ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत मदद करता है। एक तो नथिंग न्यू का पाठ हमें पढ़ाता है कि जो कुछ भी होता है कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। आज भी बाबा ने कहा मुरली में देखेंगे, हर मुरली में कितनी अलग अलग रूप से बाबा गहराई की बातें करते हैं। कल्प पहले आप भी थे, हम भी थे, हम सब थे, फिर कल्प के बाद भी होंगे, तो ये इतनी गहरी बात है, उसको समझने से हम साक्षी दृष्टा बहुत सहज हो सकते हैं। कोई भी बात है, कोई नई बात नहीं है। और दूसरा, एक का पाठ न मिले दूसरे से, तो जब ये हम समझते हैं तो भी साक्षी बहुत सहज रह सकते हैं, क्योंकि हम किसी से न भेंट करते हैं, क्योंकि भेंट की तो कोई बात ही नहीं है, हर एक का पाठ अपना अपना है। तो मैं उनके जूते में थोड़े, उनका जूता मुझे तो फिट होगा नहीं, उनका अलग है, मेरा अलग है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि दो कोई एक कुर्सी, एक पर एक के पर दूसरा थोड़ी कोई बैठेगा, एक कुर्सी पर एक ही बैठेगा ना, एक सिंहासन पर एक ही बैठेगा। तो थोड़ा फोटो फिनिश तो होता ही है, कोई रेस होती है तो उस रेस में लगता है जैसे दोनों बराबर थे, दोनों ने बराबर वो जीत हासिल की, लेकिन उस समय फोटो फिनिश करते हैं। फोटो फिनिश माना वो फोटो लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, तो वो सेकंड का जो फोटो होता है उससे पता चलता है कि एक कदम वो थोड़ा पीछे था, एक कदम केवल, और वो एक कदम आगे था, तो इसलिए नंबर उस अनुसार बदल जाते हैं। भले दूर से लगेगा ये तो एक जैसा ही था, लेकिन नहीं, पता चल जाता है कि थोड़ा तो अंतर होगा ही। तो किसी का भी पार्ट न मिले दूसरे से, इसलिए हम देखते हैं कोई फिल्म होती है ना, तो कई बार एक एक्टर का डबल रोल होता है, डबल रोल बजाता है, एक ही व्यक्ति दो रोल बजाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुना कि दो व्यक्ति एक ही रोल बजाए, कभी नहीं हुआ है। एक व्यक्ति डबल रोल बजा सकता है, क्योंकि पार्ट को चेंज करने में मेहनत नहीं है, दूसरे रूप से कर सकता है, लेकिन दो व्यक्ति एक ही रोल बजाए हो ही नहीं सकता। आवाज में अंतर पड़ जाएगा, बैठने उठने देखने में अंतर पड़ जाएगा, हंसने में अंतर पड़ जाएगा, रोने में भी थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, सब में अंतर पड़ जाएगा। आजकल तो ये जो डीएनए टेस्ट करते हैं उसमें भी हर एक का अलग अलग, आपके जैसे अंगूठे की छाप हर एक की अलग अलग, आपके आंख जो है उसकी भी आजकल वो एक्सरे वो लेते हैं, वो निशान लेते हैं उसका भी, वो भी हर एक की अलग अलग, आपके बाल के डीएनए वो भी सब अलग अलग, एक न मिले दूसरे से। तो जब शरीर के रूप में भी हम देखते एक न मिले दूसरे से, तो आप सोचिए कि पार्ट कैसे मिलेगा। इसलिए दो व्यक्ति एक रोल बजा ही नहीं सकते, थोड़ा सा अंतर तो होगा ही, दो जुड़वे भी होंगे ना उनमें भी अंतर होगा, भले कितना भी दूसरों को पता नहीं चलेगा पर माँ बाप को तो पता चल ही जाएगा ये कौन है ये कौन है। कई बार बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स जैसे होते हैं लेकिन फिर भी 19-20 का थोड़ा सा अंतर तो होता ही है। तो इसीलिए जब हरेक का पार्ट अलग अलग है, मैं किससे ईर्ष्या कैसे कर सकता हूँ, मैं किससे कंपटीशन कैसे कर सकता हूँ, मैं किससे भेंट कैसे कर सकता हूँ, हाँ मैं अपने रूप से आगे बढ़ू वो अपने रूप से आगे बढ़े, मैं किसी को गिराऊं भी नहीं, हाँ मैं उसको गिरा करके सोचूं मैं चढ़ जाऊं, उसको गिरा के मैं उसकी जगह ले लूं ये भी नहीं होगा क्योंकि कर्म की गति है। अगर ऐसे किसको गिराया भी तो 100 गुना पाप तो चढ़ेगा ही क्योंकि कर्म का हिसाब किताब तो बनेगा ही, आज मैंने उसको गिराया कल वो मुझे गिराएगा। तो इसीलिए मैं ऐसा कर्म करूं ही क्यों जो पाप के खाते में जाए। इसीलिए कंपेयर करना, भेंट करना और फिर कंपटीशन करना, ये सब जो भी दुनिया में बातें होती है बाबा कहते हैं ये सब पाप के खाते में चले जाते हैं क्योंकि ये सब देह अभिमान के वश होते हैं। देह अभिमान के वश ही आज पाप कर्म हो रहे हैं दुनिया में। तो आज भी बाबा ने बताया मुरली में कि पाप आत्माओं का संबंध पाप आत्माओं के साथ है, तो जो पाप आत्माओं के साथ ही लेना देना है तो कर्म भी पाप के ही बनते हैं, विकारों के वश ही कर्म बन रहे हैं क्योंकि उनकी जड़ तो देह अभिमानी है। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान हमें कितना सुंदर रूप से साक्षी दृष्टा का अनुभव करा सकता है। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, साक्षी दृष्टा की बात थी तो किसने प्रश्न किया कि चलो हम किसको गिराते नहीं है, चलो हम और कुछ पाप कर्म नहीं करते हैं, हम भेंट भी नहीं करते हैं, परंतु हम अगर किसी को मदद करते हैं, और बाबा ने कहा कि पाप आत्माओं का हिसाब किताब पाप आत्माओं से, तो पाप ही बन रहे हैं तो लेन देन पाप की है, पर समझो हम किसको मदद करते हैं तो मदद किया तो वो भी पाप के खाते में जाएगा क्या। एक डबल विदेशी ने मेरे से ऊपर पूछा क्योंकि ये सब कर्म की गति है। तो हमने कहा मदद भी किस रूप में, गलत काम के लिए मदद करेंगे तो जरूर पाप के खाते में जाएगा। अब व्यक्ति कोई नीचे गिर गया और हम उसको उठा रहे हैं और उसको उठाया उसको पाँव पर खड़ा किया, अब ये थोड़े कोई पाप बनेगा, ये तो आपने उसको सहयोग दिया। लेकिन ये जरूर है कि जो विकारों के वश कोई कर्म है वो पाप के खाते में जरूर जाएगा। परंतु अगर हम एक सहानुभूति के रूप से, ह्यूमैनिटी के रूप से, मानवता की दृष्टि से अगर मदद करते हैं ये तो बहुत ऊंची बात, इसे तो भाग्य बनता है, इसे तो दुआएं जमा होती है। तो मानो ये बातें हमें समझनी होगी, परंतु हर एक का पार्ट तो अपना अपना है ना, हम किसी के भी पार्ट से भेंट कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक का पद भी अलग अलग है। तो ये जब बुद्धि में आता है तो एक तो न हम ईर्ष्या करेंगे किसी के साथ, न हम किसी पर लट्टू हो जाएंगे, न किसी से नफरत करेंगे, न किसी को गिराने का संकल्प करेंगे, और न ही हम ये सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं उसका भी अपना अधिकार है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाबा हर एक की विशेषताओं को आगे रखता है। कैसे हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हर एक की विशेषता का उपयोग होता है। यहाँ कोई खाना बनाने में बहुत होशियार है तो उसकी सेवा ली जाती है। हम दादी जानकी जी कई बार अनुभव सुनाती है कि एक भाई है वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, विदेश में रहता है, तो दादी जी उनको सब जगह भेजती है, जहां जहां रिट्रीट होती है वहां उनको भेजती है, जाओ ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, और टिकट देती है क्योंकि खाना बहुत अच्छा बनाता है। ऐसे थोड़ी खाली भाषण करने वालों को ही भेजते हैं, खाना बनाने वालों को भी दादी जी भेजते हैं क्योंकि ये उनकी विशेषता है। किसके अंदर सफाई का गुण बहुत अच्छा है तो इंटीरियर डेकोरेशन का गुण बहुत अच्छा है, तो कहीं मकान बना दादी कहेंगी जाओ वहां पर वो मकान को संवार के आओ, कैसे उस मकान को हम और सुंदर बनाए वो करके आओ। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है और उस विशेषता का सदुपयोग होता है। किसके अंदर भाषण की कला है चलो वो सेवा करते हैं, लेकिन भाषण करने वाला उनसे भेंट कैसे करेगा या ईर्ष्या कैसे करेगा, या खाना बनाने वाला भाषण करने वाले से कैसे भेंट कर सकता है। हाँ इनको इतना मान मिलता है मुझे नहीं, उनको भी मिलता होगा, जरूर मिलता होगा, कितना उनकी तारीफ करते होंगे। भाषण करने से कोई इतनी तारीफ नहीं होगी, पर खाना अच्छा बना करके खिला उसकी तारीफ तो और ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया खाना बनाया। यहाँ भी आते हैं शिविर में, भाई बहने आते हैं, इतने क्लासेस हम कराते इतना लेक्चर देते इतना कहते, उसका वर्णन कम करेंगे। आप यहाँ पर हमें सब बहुत प्यार से मिले, सबकी सब मुस्कुराते थे, बहुत अच्छा हमें सर्व किया, खाना बहुत अच्छा मिला, वही ज्यादा वर्णन करते। भाषण मिला ज्ञान मिला ये वर्णन नहीं करते, तो किस चीज का प्रभाव पड़ा भाषण करने वालों का थोड़ी। बाबा ने तो और भी कहा है कि बस थोड़ा कहो पर इतना प्रभावशाली कहो, वो थोड़े में सार बता दो। दादियां तो हमारी ऐसे ही करती है, जो कहा कि भाषणा आप दो, भाषण तो दूसरे करेंगे। तो देखा गया है कि अगर इस प्रकार की हमारी स्थिति है तो अंतर में वो साक्षी और दृष्टा की स्थिति में कितने हम हर्षित रह सकते हैं, बहुत हर्षित रह सकते हैं। परंतु जैसे ही हमने औरों के संकल्प किए, कोई नेगेटिव संकल्प किए, हम अपनी स्थिति को बिगाड़ते, उसकी स्थिति बिगड़े या न बिगड़े, उसकी स्थिति पर कोई असर न भी पड़े, हम अपनी स्थिति को बिगाड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जो आत्मा का ज्ञान दिया उससे कैसे साक्षी दृष्टा की स्थिति बन जाती है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। खास करके जब किसकी मृत्यु होती है, चाहे कितना भी वो प्रिय था, लेकिन हम साक्षी दृष्टा हमें बनना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा हमें यही कहते हैं कि बच्चे कभी भी रोना नहीं, क्योंकि जिन रोया तिन खोया, चाहे कितना भी वो प्रिय था, परंतु आंखों से कभी दुख के आंसू न, आंखों से दुख के आंसू कभी न निकले। तो वो दुख के आंसू नहीं कभी नहीं निकले, उसके लिए साक्षी दृष्टा की तो स्थिति चाहिए। कई बार ऐसे अभी बीच में कहीं हम गए थे, इतना वो बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी डेथ हो गई, तो पिता यही कहे हमें ले गए थे कि भाई आप इनको थोड़ा सांत्वना दो, तो बस पिता ऐसे ही कहे कि भगवान मेरी आयु ले लेता था ना, मुझे खत्म कर देता था ना, मेरी आयु मेरे बेटे को दे देता था ना, मेरे बेटे को क्यों लिया, मुझे ले लेता था। तो हमने उसको समझाया, देखो ये भी आप सोचो उसका इतना ही पार था, पर इतना रोए, तो चलो हमने देखा माताएं रोती है पर भाई भी इतना ही रोते हैं, क्या नहीं है ना, कि उस आत्मा का तो इतना ही पार था। अब यहाँ पर हमें साक्षी दृष्टा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्थिति में हम कुछ कर ही नहीं सकते, उस आत्मा का पार्ट ही इतना था, तो हम अपनी आयु भी उसको क्या देंगे, कुछ भी नहीं दे सकते, उसका इतना ही मेरे साथ हिसाब किताब था। तो साक्षी दृष्टा की स्थिति आत्मा के ज्ञान से कितनी अच्छी आती है कि आत्मा तो मरती नहीं। कई बार हम लोगों को कहते हैं, जैसे किसकी मृत्यु हुई तो कहेंगे हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, तो हम भी शांति का दान देने जाते हैं, वहाँ शांति के भाषण करने जाते हैं। परंतु जिस व्यक्ति ने सारे जीवन में कभी शांति का अनुभव किया ही नहीं होगा, तो वो आत्मा जहाँ भी जाएगी वह शांति रहेगी ना। भले हम शांति का दान देंगे पर उस आत्मा का अपना पुरुषार्थ भी तो चाहिए था, तब तो वो शांति का अनुभव करता। चलो हमारी मदद थोड़ी बहुत तो मिलेगी। तो उनके प्रति शुभ का भावना रहती है, शुभ कामना रहती है कि उस आत्मा को शांति का दान मिले, परंतु उसके अपने भी तो कर्म है। हाँ, ये जरूर है कि हम अशांत न हो। अगर हम अशांत हो जाते हैं तो हमारी अशांति उसको और अशांत कर देगी, क्योंकि हम अशांत हुए और उसका हमारे में मोह था या हमारा उसमें मोह है, तो नेचुरली हम अशांत होंगे तो आत्मा जहां जाएगी हमारी अशांति और उसमें बढ़ जाएगी और अशांत हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि वो शांति में रहे, तो उसके लिए हमें शांति में रहना होगा, तब उसको शांति का दान दे सकेंगे। तो साक्षी दृष्टा की स्थिति तो हर वक्त चाहिए। हाँ, जहाँ हम मदद कर सकते हैं अवश्य करें, क्यों ना करें। कोई धन मांग रहा है, हम धन नहीं दे सकते हैं, चलो नहीं दे सकते हैं, पर कम से कम हम मीठे शब्दों से उनको कह तो सकते हैं ना कि भाई मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। उसके लिए हम क्रोध तो नहीं करेंगे, गालियां तो नहीं देंगे उनको, उनका अधिकार तो नहीं करेंगे, तो प्यार से भी कह सकते हैं, तो वो भी साक्षी दृष्टा स्थिति है। क्यों आए तो मेरे पास, क्या अधिकार है तुमको मेरे पास आने का, नहीं देंगे। जैसे वो मिसाल देते हैं ना कि एक भिखारी किसी गुड़ के दुकान में गया और उस दुकानदार को कहा कि गुड़ दो, थोड़ा सा भूख लगी है। तो दुकानदार ने उसको खूब गालियां दी, कहा जा। तो वो के जाते जाते कहता, अच्छा साहब गुड़ नहीं दे सकते हो, पर गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, उसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा। तो गुड़ जैसा मीठा बोलने में तो कोई खर्चा है ही नहीं, कम से कम हम उनके शुभ चिंतक तो रहे, उनके प्रति नफरत तो न रखे। तो ये भी साक्षी दृष्टा की ही भावना है। और फिर जब परमात्मा का हमें ज्ञान मिलता है तो साक्षी दृष्टा की भावना और भी ऊंची हो जाती है, उसमें प्यार प्रेम सब में भर जाता है, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं, सब पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और वही सबका पालनहार है। तो मैं अभिमान किस बात का करूं, मेरे अभिमान रखने से ही कोई की पालना थोड़ी होती है। कई ना अभिमान के वश कहते हैं मैं इतनों की पालना करता हूँ। एक मिसाल देते कि एक पिता ने अपने बच्चों को कहा, देखो मैं मेहनत करता हूँ, मैं कमाता हूँ ना, इसीलिए तुम लोग पल रहे हो, तुम लोग इतना नाज नखरे कर, अभी मैं मर जाऊं तो देखना आप लोगों का हाल क्या होगा, मैं ही तुम्हारी पालना कर रहा हूँ। तो एक साधु था उनका जो गुरु था, तो अब उसको लगा इसको बड़ा अभिमान है, ये क्या ये कह रहा है, इतना अभिमान क्यों दिखा रहा है। तो एक दिन क्या किया, गुरु ने उसको कहा कि आप दो चार दिन हमारे आश्रम में आके रहो, थोड़ा शांति का अनुभव करो, आप बहुत धंधा कर रहे हो, बहुत उसमें व्यस्त हो, आप थोड़ा समय हमारे पास आके रहो। तो गुरु के पास गया, गुरु का कहना माना, और उसके जब एब्सेंस में घर में संदेश भेज दिया कि आपका पिता मर गया, पिता मर गया। अब पिता मर गया तो बच्चे रोने लगे, अब हमारा क्या होगा क्या होगा। अब गुरु उस व्यक्ति को और ठहरा रहा है, ठहरो थोड़े दिन और ठहरो। तो आखिर कब जाऊंगा मैं घर, वो सोचने लगा। तो गुरु ने कहा अभी देखना, आप घर जाओगे ना तो आपके परिवार वाले आपको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो कैसे नहीं स्वीकार करेंगे, मेरे बिना तो वो तो बेचारे भूखे मर गए होंगे, कितना मुझे याद करते होंगे। परंतु तो ये नहीं उनको बताया कि आपके घर में कह दिया कि मर गया, ये कहा नहीं। तो जैसे वो घर पहुंचा तो बच्चों ने कहा अरे भूत आया, भूत आया। क्योंकि उनको यही पता था ये तो मर गया, ये भूत कहां से आ गया। तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे मेरे बिना भी सब कुछ चल सकता है, इतना अभिमान मैं क्यों रख रहा हूँ। तो ये भी एक साक्षी दृष्टा की अवस्था है कि हम ये कभी अभिमान नहीं रखते, मैं ही करता हूँ, मेरे बिना नहीं होगा, मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। तो साक्षी दृष्टा माना ये काम तो रुकना ही नहीं है, वो तो होना ही है, पर इसमें मैं फंसा हुआ हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे बिना नहीं होगा, ये मेरा अभिमान है। तो साक्षी दृष्टा की अवस्था में बहुत बातें आती है। ड्रामा के ज्ञान से तो साक्षी अवस्था इतनी सुंदर आती है ना, हम प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों ये क्यों 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 करना, माना ड्रामा का राज हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होते हैं जब ड्रामा का ज्ञान हमें है। आश्चर्य भी नहीं होता है, कई बार प्रश्न नहीं उठते हैं, आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसे हुआ क्या, तो ये भी साक्षी दृष्टा अवस्था नहीं है। आश्चर्य खाना भी साक्षी दृष्टा अवस्था नहीं है। चाहे कैसे भी हमें न्यूज मिल जाए, कुछ भी हो, लेकिन न प्रश्न हो न आश्चर्य हो। अगर आश्चर्य भी खाया ना, इसका मतलब नथिंग न्यू का पाठ हमें भूल गया है। जो बाबा कहते जो कुछ हो रहा है कुछ भी नया नहीं है, तो आश्चर्य किस बात का खाना। जैसे कोई नाटक हमने देखा, उसकी कहानी हमें मालूम है, तो कहानी मालूम होने के बाद अगर दोबारा वो देखने जाओ और कुछ ऐसी बात हुई, तो आश्चर्य थोड़ी होगा, आप कहेंगे मुझे मालूम है ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, तो आश्चर्य तो नहीं खाएंगे ना। आश्चर्य तब खाएंगे जब लगे, जब पहली बार देखते या पता नहीं था, अचानक आपको पता चला, तो न प्रश्न उठेगा न आश्चर्य खाएंगे और न ही दुख होगा। दुख भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, किसका दुख करेंगे। बाबा कहते अंत के समय तो सब होलसेल मौत होगा, कौन किसका दिया भी जलाएगा, कौन, कोई नहीं जलाएगा, कोई भी नहीं जलाएगा। अभी तो चलो कोई एक दो मरते तो दिया जलाते हैं कि आत्मा कहीं अंधकार में न रहे, पर अंत में तो कोई किसका दिया नहीं जलाएगा। कौन सा हॉस्पिटल होगा जहां उपचार होगा, न डॉक्टर रहेंगे न पेशेंट रहेंगे, तो कौन किसका करेगा। इसलिए दुनिया में तो कितना डर लगा हुआ है विनाश का, और हम कहते हैं कि विनाश हो तो हमारे लिए नई दुनिया आए। हा? देखो हम स्वार्थी है ना कि नहीं, स्वार्थी है या नहीं है, लेकिन हम स्वार्थी नहीं है। क्यों स्वार्थी नहीं है, क्योंकि बहुत दुख बढ़ गया है। जैसे कोई रोगी है, बहुत रोगी है, बहुत रोगी है, एक एक अंग में रोग भरा हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी मरता नहीं है, मान लो नहीं मरता है, बहुत कष्ट बहुत कष्ट बहुत कष्ट, पर फिर भी मरता नहीं है, तो अंदर में तय ना बेचारा मुक्त हो जाए, बेचारा मुक्त हो जाए, ऐसे होता है ना। लेकिन ये भी एक गवर्नमेंट का कानून है कि डॉक्टर उसको एक मौत की इंजेक्शन तो दे नहीं सकता, अगर दे दे तो हत्यारा कहलाएगा, इसीलिए वो तो नहीं दे सकता है, भले कितना भी रहम आता हो उस पर। मर्सी किलिंग आजकल कुछ देशों में ये एक कानून बना है, माना कानून तैयार किया है, मर्सी किलिंग, कुछ देशों, भारत में नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ऐसी स्थिति में है, बिल्कुल कष्ट भरा रहा है और आत्मा अभी निकल नहीं रही है, बहुत कष्ट है बहुत कष्ट है, तो वो खुद ही कहता है ठीक है, साइन कर लेता है या उनके रिश्तेदार की, बस इसको खत्म, मना ये इंजेक्शन देके पूरा करे, मना क्योंकि सहन नहीं कर सकता। परंतु आत्मा तो वो तो कष्ट भोगती तो है ना, पर जैसे आत्मा निकल गई हिसाब किताब पूरा हो गया। तो इसीलिए दुनिया में हम भाई हम चाहते बहुत दुख है संसार में, अभी जल्दी ये खत्म हो, पर बाबा कई बार कहते हैं बच्चे दुख के पहाड़ तो और गिरने हैं, और गिरने हैं। कई कहते हम लोगों को कि बस ऐसे ही कलयुग से सतयुग आ जाए ना, ये विनाश बीच में क्यों हो, इतना दुख इतना ये सब क्यों हो संसार में, ऐसे ही कलयुग से बदल सतयुग आ जाए, बस रातों रात, जैसे रात के बाद सुबह एकदम आ गया चमत्कार हो गया, वैसे ही सतयुग आ जाए। पर बाबा कहते ऐसे कैसे होगा, प्रकृति को तो सतो प्रधान बनना है, पाप आत्माओं का अंत होना है, हिसाब किताब सबके चुकतू होने हैं, ये सब होने के लिए विनाश तो चाहिए ही, लेकिन उसके लिए साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, उसके लिए अशरीरी अवस्था का अभ्यास बहुत काल का चाहिए, क्योंकि हम भी अगर जाएंगे तो कहीं भी मेरी बुद्धि न लटकी हो न अटकी हो। दादी जानकी कई सुंदर शब्द कहती है, लटकना अटकना चटकना, ये सब लटकते हैं अटकते हैं चटकते हैं, तो ये सब कुछ भी न हो, एक सेकंड में आत्मा शरीर हो जाए, मक्खन से बाल हो जाए। हाँ, जैसे मक्खन मक्खन में बाल पड़ा हो वो कैसे निकलता है, कितना सहज। तो आत्मा अशरीरी स्थिति में योग युक्त मिथ्या स्थिति में थी और आत्मा उड़ गई वतन में, ऐसा अनुभव हो, वो अनुभूति तो बहुत योगियों की श्रेष्ठ अनुभूति है। जिसको कहेंगे कि मृत्यु भी स्वेच्छा से होता है, अपने उनके वश में आत्मा सहज मुक्त हो जाए क्योंकि अशरीरी बन गई। तो इसीलिए बाबा कहते कोई दुख भी न हो, फिर उसके बाद चिंता भी न हो, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा ये भी न हो। क्योंकि अगर हाय क्या होगा ये चिंता है तो भी साक्षी दृष्टा की अवस्था नहीं है, क्योंकि ये तो पता है ना, जो होगा अच्छा ही होगा, सब कुछ कल्याणकारी है। इस ड्रामा के अंदर कोई भी ऐसी बात अकल्याणकारी है ही नहीं, संसार में सब कल्याणकारी है। ये पाप का घड़ा भरना ये भी कल्याणकारी है, जब पाप का घड़ा भरे तब तो फूटे ना, अगर भरे ही नहीं तो फूटेगा कैसे। इसीलिए ये भी कल्याणकारी है कि पाप का घड़ा इतना भर रहा है। आज भी मधुबन में एक जज आए थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज आए थे, तो वो एक बात सुना रहे थे कि देखो कैसे जजों के ऊपर भी कितनी बड़ी बात आती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, लेकिन जज भी क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उनको जो उनके आगे जो एविडेंस है उसी के आधार से उनको निर्णय देना है। तो हमने उनको कहा कि देखो आपको तो भगवान की सीट मिली हुई है, भगवान की सीट, क्योंकि भगवान भी न्यायाधीश है। भगवान के लिए कहते हैं ना कि जिसको या ईश्वर के लिए कहते हैं, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो वो तो न्याय तो सही करता, आप भी ऐसे ही न्याय करते हैं। तो मानो कि बात तो सही है, हर एक का कर्म तो उसके साथ है ही है। तो इसीलिए चिंता की भी कोई बात नहीं है, जो है उसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है, कल्याणकारी दृष्टि जरूर रखते हैं, तो न दुख करते हैं न चिंता करते न डर है, डर भी नहीं, हाय क्या होगा ये भी नहीं, क्योंकि बाबा साथ है। इसलिए बाबा मिसाल देते हैं कि एक छोटा बच्चा हो अपने पिता के साथ है, पिता की उंगली पकड़ी हुई है तो उसको कोई डर नहीं है, उसको पता है कुछ भी होगा तो पिता तो साथ में है ना। कई बार बच्चा डर जाता है तो भाग भाग के माँ की गोद में चला जाता है, बस माँ की गोद में चला गया रोना बंद, सुरक्षित हो जाता है। पिता का हाथ पकड़ लिया रोना बंद, और जब तक पिता का हाथ नहीं पकड़ा तब तक हजारों के बीच में होते हुए भी वो अपने आप को अकेला ही समझता है, क्योंकि पिता दिखाई नहीं देता। मेले में होता ना, पिता बच्चा बिछड़ जाता है पिता से तो रोने लगता है, हजारों लोग उनके सामने हैं, मेले में तो हजारों होंगे पर पिता नहीं दिखाई देता है तो रोता रहेगा। कितने भी लोग कहे मैं हूं ना, नहीं पप्पा कहाँ है, पप्पा कहाँ है, डैडी कहाँ है, और जैसे ही पिता सामने आता है रोना बंद। वो हजारों को नहीं देखता है, वो तो पिता को ही देखना चाहता है। तो इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे सदा मुझे अपना साथी बनाओ, आगे पीछे साथ में दाएं बाएं। इसीलिए सर्वव्यापी का ज्ञान दुनिया में फैला ताकि भगवान को अपने से अलग करो ही नहीं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी कैसे फैला होगा, द्वापर युग से ही फैला है, कोई सत्युग त्रेता में तो नहीं होगा। मीरा को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, जहां जाती थी जहां भी कुछ भी करती थी श्री कृष्ण उनके सामने हाजिर हो जाते थे। तो वो यही कहती थी जहां देखती हूँ तू ही तो, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, है ना। मीराबाई राजस्थान की है तो कैसे वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हर वक्त करती थी, हर बात के लिए श्री कृष्ण को ही याद करती थी, चाहे पति उसको कितने भी गहने देवे ये देवे वो देवे, वो कहेगी ये मैं अपने श्री कृष्ण को दूंगी, मैं अपने श्री कृष्ण को पहनाऊंगी, वो उसका पति का ये तेरे लिए है, नहीं नहीं मेरे मैं श्री कृष्ण के लिए रखूंगी, श्री कृष्ण को दूंगी, क्योंकि उनको वो ही दिखाई देता था, पति तो दिखाई नहीं देता था। फिर आगे चल करके ऋषि मुनियों को ये पता था कि घोर कलयुग आएगा, तो घोर कलयुग आएगा तो दुनिया में बहुत पाप बढ़ेगा, तो ये भी शास्त्रों में इसलिए लिख दिया कि भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, पाप मत करो, भगवान देख रहा है, सजा मिलेगी, वो देख रहा है, वो सब जगह है, देख रहा है। लेकिन कलयुग की दुनिया में अभी हम देखते न वो साक्षात्कार है और न ही कोई डर है, भगवान देख रहा है ये कहते भी है पर डर तो है ही नहीं। इतना डर खत्म हो गया है जो समझ से वही सब कुछ कर रहा है, चोर भी चोरी भी वही कर रहा है, डाका भी वही डाल रहा है, खून भी वही कर रहा है, तो चोर भी वही, तो पुलिस भी वही, तो जज भी वही, वकील भी वही, सब एक ही है, एक का ही पार्ट चल रहा है सारे संसार में। लेकिन कितना अनर्थ हो गया है, इसलिए बाबा ने हमको ड्रामा का इतना सुंदर ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के आधार से हम सहज ही साक्षी दृष्टा का पाठ बजा सकते हैं। कभी भी मन उदास न हो, कभी भी डर न हो, कभी भी चिंता न हो, कभी भी दुख न हो, कभी भी आश्चर्य न हो, कभी भी प्रश्न न हो, ये है साक्षी दृष्टा की अवस्था और ये बाप समान अवस्था है। बाबा के अंदर में कभी दुख होता होगा, चाहे कितनी भी बच्चों की बातें आती है बाबा के आगे, कितने बाबा बच्चे कलंक लगाते हैं या गलत काम करते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं या मानो बहुत कुछ गलतियां करते हैं, बाबा का नाम बदनाम करते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते, कितना बाबा मेहनत करते हैं बच्चों पर तो भी बच्चे सुधरते नहीं है, तो भी बाबा कहेंगे बच्चे इनका पाठ ऐसा ही है। तो जब बाबा इतना साक्षी दृष्टा है, हम कैसे हम अपने आप को देखें, बताए ना, बाबा के बन गए ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी क्या बनना है, क्या बनना है, बाबा के समान बनना है। समान बनेंगे तभी तो हम उड़ सकेंगे ना बाबा के साथ, तो हमें क्या बनना है, वो बाबा के साथ उड़ने के लिए बाबा की सच्ची सजनी बनना होगा, सजनी ही तो साजन के साथ उड़ सकेगी, तो सजनी बनना है या बराती बनना है, साथी बनना है या बराती बनना है, बराती तो बहुत बनेंगे, मच्छरों सदृश सब उड़ेंगे, इसलिए शिव की बारात तो बहुत मशहूर है, औरों की बारात इतनी मशहूर नहीं है, श्री कृष्ण की बारात या श्री राम की बारात या और देवी देवताओं की बारात का इतना वर्णन नहीं है, है उनका भी है। हम अभी बीच में जनकपुरी गए थे, नेपाल में जनकपुरी है, तो वहाँ बता रहे थे कि राम जब अयोध्या से जनकपुरी आया, सीता का चारों भाई आए, सीता को वर्णन मतलब चारों का ही वहीं पर उनका वहीं उनका विवाह हुआ, जनकपुरी में दिखाते हैं कहाँ उनका विवाह हुआ, वो मंडप दिखाते हैं, कुछ यज्ञ दिखाते हैं, तो हमने ऐसे पूछा वहाँ, तो वो जब अयोध्या से आए होंगे विवाह करने के लिए तो बारात भी साथ में आई, तो क्या बारात भी आई, बहुत बड़ी बारात थी, लेकिन शिव की बारात की भेंट में वो क्या बारात होगी, सोचने की बात है। तो शिव की बारात कैसी होगी, शिव की बारात में तो 84 लाख यूनिया भी बताई है, न जाने क्या क्या उस बारात में दिखाए है, तो अंत की घड़ी का वो वर्णन है कि अंत में सब आत्माएं वापस जाएंगी, सब भटकती आत्माएं भी वापस जाएंगी, भूत प्रेत पिशाच ये जो कुछ भी दिखाते ना वो सब शिव की बारात में दिखाते हैं, तो सब आत्माएं वापस जाएंगी, तो हम बराती बन के जाएं या साथी बन के जाएं, क्या बन के जाएं, साथी, तो साथी बन के जाने के लिए उनके समान बनना पड़ेगा ना, इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे पवित्र बनो योगी बनो, इतना बाबा हम बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं, ये सब किस लिए, ताकि हम बाप समान बन सके, परंतु उसके लिए पहला कदम हिम्मत का हमारा हो, तो आप सब तो बहुत ही हिम्मतवान बच्चे हो बाबा के, जो बाबा के पास पहुंच गए और ये सुंदर अनुभव जो 2 तारीख को अवश्य होगा, भले साकार में दादी गुलजार हमारे बीच नहीं होंगे, पर जरूर वो अनुभूति बाबा कराएंगे। अभी भी डबल विदेशियों का प्रोग्राम था, 18 अक्टूबर को डबल विदेशियों का मिलन था, तो दादी गुलजार तो अहमदाबाद में ही थे, लेकिन इतना सुंदर अनुभव किया, 2500 डबल विदेशी भाई बहने आए थे, इतना इतना बड़ा संगठन डबल विदेशियों का, भारत वालों का तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन विदेशी भाई बहनों का इतना बड़ा संगठन, ये बहुत बड़ी बात थी। और सब आए थे, उनको यही था क्योंकि डबल विदेशियों की जब टर्न आता है तो सबको बाबा से दृष्टि मिलती है, हर एक मंच पर आता, अभी तक तो यही था, और बिल्कुल ही बाबा नहीं आए, परंतु जो अनुभव उस दिन किया वो भी जबरदस्त अनुभव था। इसीलिए अभी भी आपके लिए ये योग बठिया ही रखी है, ताकि योग बठी में आप योग के इतने गहरे अनुभव करो, जिसके आधार से उस 2 नवंबर को भी आप इतना सुंदर अनुभव करेंगे, जैसे महसूस करेंगे कि बाबा हमारे साथ है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम उसी योग युक्त अवस्था में बैठेंगे और बाबा को अपना साथी बनाएंगे और दुनिया के सामने साक्षी और दृष्टा होकर के बाबा की लगन में मगन होंगे। तो बाबा के साथी कैसे बनेंगे? उनके समान बनने से। और उनके समान कैसे बनेंगे? जब एक एक गुण बाबा का हमारे में आएगा। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूं। बाबा ने जो भी ज्ञान उनमें है वो सब संपूर्ण ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं खाली हो जाता हूं, सब कुछ तुमको दे देता हूं। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनकर हर परिस्थिति को देखते हैं, हर आत्मा को देखते हैं, हर घटना को देखते हैं। साक्षी दृष्टा होकर प्रश्नों से पार चले जाते हैं। दुख, चिंता, भय, इनसे पार चले जाते हैं। दृष्टि और वृत्ति हमारी श्रेष्ठ बन जाती है। जितना ही अंतर में उपरांता की स्थिति, न्यारेपन की स्थिति, उतना ही सर्व के प्यारे बन जाते हैं। जितना ही भीतर में गंभीर बनते हैं, उतना ही व्यवहार में हर्षित मुख बनते हैं। सागर की तरह कितना गंभीर, कितना गहरा, लेकिन ऊपरी स्तर पर कितनी लहरें, तो जितना ही गंभीर उतना ही हर्षित मुख। यही साक्षी दृष्टा की स्थिति है। यही बाप समान स्थिति है। यही संपूर्णता है। यही कर्म बंधनों से मुक्त अवस्था है। कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, सर्व संबंध केवल एक के साथ, मैं आत्मा शिव बाबा की तो हूं ही, पर अब शिव बाबा के समान भी बन रही हूं। बाप समान संपन्न और संपूर्ण, कोई भी दाग न रह जाए, बेदाग हीरा बन जाऊं, कहां भी बुद्धि आकर्षित न हो जाए। किसी से भी नफरत भी नहीं, सब बाबा के हैं। मैं भी बाबा का ही हूं। सब महान है। सबके लिए समदृष्टि भी हमें साक्षी और दृष्टा बनने में मदद करती अंदर ही अंदर। बाबा से मीठी मीठी बातें करें, मीठे बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, बाबा से अंदर ही अंदर वायदे करें, बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल आप समान जरूर बनेंगे। आपका नाम अवश्य बाला करेंगे। आपके थे, आपके हैं और आपका ही होकर रहेंगे। बाबा का प्यार हम पर बरसता रहे, यही अंतर की लगन हो। केवल उनको ही देखे, उनसे ही दिल का हाल कहे, उनसे ही सच्ची प्रीत हो। यही एक कदम हिम्मत का, हमें हजारों कदम मदद का अनुभव कराएगा। बाबा की याद से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है।
सिर्फ तुमको ही देखूं,
आंखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं,
कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं,
कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं,
तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार, तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार, ओ कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार, तेरे गले का